हरे कृष्ण।
वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा कोरी নাশ তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গায়ে তব পাছে পাছে আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গায়ে তব পাছে পাছে ঠাকুর দয়ার সাগর দাসে করুণা করি বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর দাসে
हे वैष्णव ठाकुर आप तो दया के सागर हैं इस दास पर करुणा करके अपने श्री चरणों में शरण देकर मेरे अनर्थग्रस्त हृदय को निर्मल कीजिए मैं आपके श्री चरणों को पकड़कर प्रार्थना करता हूं आप कृपा पूर्वक मेरे षड वेगों का दमन कीजिए तथा मेरे छह दोषों को सुधार कर छह गुणों को प्रदान कीजिए हे वैष्णव ठाकुर मुझे छह प्रकार का सत्संग प्रदान कीजिए मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूं छह वेग हैं वाणी मन क्रोध जिह्वा उदर और जननेन्द्रिय का वेग छह दोष हैं अधिक आहार भक्ति प्रतिकूल चेष्टा प्रजल्प भक्ति के नियमों में दुराग्रह अथवा अनाग्रह कुसंग भक्ति के अतिरिक्त दूसरे असत मतवादों को ग्रहण करने की इच्छा छह गुण हैं भक्ति साधन में उत्साह निश्चयता धैर्य भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान कुसंग त्याग सदाचार छह सत्संग हैं प्रीति पूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को ग्रहण करना उनके समीप हृदय की बातें व्यक्त करना भक्ति रहस्य को सुनना प्रसाद सेवन करना और प्रसाद सेवन कराना एकाकी हरिनाम संकीर्तन करना भी मेरे बस की बात नहीं है अतः आप मुझे कृपा कर कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा की एक बूंद मात्र प्रदान कीजिए श्री कृष्ण आपके हृदय के धन हैं अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं मैं तो कंगाल दीनहीन हूं केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूं अर्थात आपका अनुगमन कर रहा हूं भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा विरचित इस शरणागति ग्रंथ से है तो इस भजन का संबंध उपदेशामृत से भी है आप समझ गए होंगे यहाँ षडवेगों की बात हो रही है, छह दोषों की बात हो रही है, छह गुणों की बात हो रही है, साथ साथ में छह प्रकार के सत्संग, तो ये सब चर्चा करने वाले हैं उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी।
His Divine Grace. Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jaya. Anant Koti Vaishnava Vrinda Ki Jaya. Shri Shri Krishna Balaram Ki Jaya. Shri Shri Radhashyam Sundar Ki Jaya. Shri Shri Gornitaya Ki Jaya. Shri Upadeshamrit Ki Jaya. Shri Larupa Goswami Pad Ki Jaya. Itai Gaur Premanande. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jaya. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jaya. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jaya. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jaya. Om Jnanati Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Guru Vedavaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha. Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathambitam Tamasajivam. Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam. Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhambitamscha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Lankayate Girim Yatkripata Mahamvande Shri Gurun Dinatarinam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurapushe Namaha He Krishna Karunasindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. तो आज से हम उपदेशामृत के दूसरे श्लोक की चर्चा करेंगे. पहले दिन हमने चर्चा की थी कि दूसरे श्लोक में जो कि अत्याहार इस शब्द से शुरू होता है, इसमें भक्ति के प्रतिकूल षड गुणों का वर्णन है, या जिनको भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन में षड दोष कहते हैं. और यहां से मध्यम अधिकारी गोस्वामी के बाह्य व्यवहार और भक्ति के नियमों का वर्णन पाया जाएगा. तो आइए इस श्लोक का उच्चारण हम सब करते हैं. ये श्लोक अनुष्टुप छंद में है. अनुष्टुप छंद भगवद गीता के प्राय सभी श्लोकों का है, हालांकि ऐसे भी कई श्लोक हैं जो अनुष्टुप में नहीं है, जैसे देहि नोस्मिन यथा देहे आदि. तो ये श्लोक भी उसी छंद में है. अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. हाँ बोलिएगा.
अत्याहारः प्रयासश्च
अजल
पौर्णिमाग्रहः
जनसङ्गश्च लौल्यम् च
षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति अत्याहारः प्रयासश्च अजल्पोनियमाग्रहः
जनसङ्गश्च लौल्यम् च
षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति अत्याहारः प्रयासश्च अजल्पोनियमाग्रहः
जनसङ्गश्च लौल्यम् च
षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पोनिमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यम् च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पोनिमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यम् च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति
माताजी
अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पोनिमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यम् च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पोनियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यम् च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति
अच्छा तो अब कौन पढ़ेंगे हर बार नए भक्त पढ़े अब कौन पढ़ेंगे कौन जोर से पढ़ेंगे हाँ पढ़िए जोर से पढ़िए ताकि सभी सुन सकें
जब कोई निम्नलिखित छह क्रियाओं में से मैं अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है पहला आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना दूसरा उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है तीसरा सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ बातें करना चौथा शास्त्रीय विधि विधानों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अभी तो केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना पांचवा ऐसे सांसारिक व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते तथा छठवा सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालच करना मनुष्य जीवन
तो इस श्लोक में षड दोष षड दोषों का वर्णन है षड दोष अर्थात वो छह गुण जो हमारे भक्ति के लिए हानिकारक है प्रतिकूल है इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यह कहा है भक्ति प्रतिकूल षट गुण तो ये छह गुण कौन से हैं इनका वर्णन इनका उल्लेख यहां रूप गोस्वामी पाद ने किया है और यहां इस चार्ट में भी है तो उपदेशामृत के इन श्लोकों को हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए अगर कंठस्थ नहीं है तो ये कंठस्थ अवश्य होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं हम सबके लिए तो आइए हम तात्पर्य पढ़ते हैं लेकिन तात्पर्य बल्कि ये सारा जो श्लोक है बल्कि सारा हमारा जीवन है इस एक सूत्र के ऊपर आधारित है और इस सूत्र के साथ ही प्रभुपाद जी तात्पर्य शुरू करते हैं और ये सूत्र कौन सा है पढ़िए मनुष्य जीवन सादा जीवन और उच्च विचार के लिए है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। परंतु आजकल क्या देखा जाता है, हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग नहीं, हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग, अर्थात सादे विचार और उच्च जीवन लोग चाहते हैं। परंतु मनुष्य जीवन ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तात्पर्य पढ़िएगा।
मनुष्य जीवन सादा जीवन उच्च विचार के लिए है, क्योंकि सारे बंद जीव भगवान की तीसरी शक्ति अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान की तीन मूल शक्तियां हैं, पहली शक्ति अंतरंगा शक्ति है, दूसरी तपस्या शक्ति है और तीसरी बहिरंगा शक्ति है। सारे जीव तपस्या शक्ति के अंतर्गत हैं और वे अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति के मध्य स्थित होते हैं। परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने से जीवात्माओं या सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंगा शक्ति के या बहिरंगा शक्ति के वश में रहना होता है। जब वे अंतरंगा शक्ति के वश में होते हैं तो वे अपनी प्राकृतिक वैध सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, यथा भगवान की भक्ति में निरंतर व्यस्तता। इसे भगवद गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गया है। महात्मानश्च मापार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता भजन्तानन्य मनसो ज्ञात्वा भूता अधिमव्ययम्। हे पिता पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतया भक्ति में संलग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे भगवान के रूप में आदि तथा अभ्यय मानते हैं। महात्मा शब्द विशाल हृदय वालों को बताने वाला है, संकुचित हृदय वालों को नहीं। सदैव अपनी इंद्रियों की पुष्टि में लगे रहने वाले कुछ संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं जिससे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सकें। वे अन्य लोगों की इंद्र तृप्ति के लिए यथा अपने परिवार के सदस्य, जाति या फिर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समाज की तृप्ति के लिए निजी इंद्र तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं। वास्तव में यह विस्तीर्ण इंद्र तृप्ति है जो व्यक्तिगत से जातिगत और जातिगत से स्वभाव जगत को हो सकती है। यह सब भौतिक दृश्य से भले ही बहुत अच्छा हो लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है। ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है जो चाहे व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण, लेकिन परमेश्वर की इंद्रियों की तृप्ति करके ही मनुष्य महात्मा या विशाल हृदय बना सकता है। भगवद्गीता से उपयुक्त श्लोक में दैवी प्रकृति शब्द भगवान की अंतरंगा शक्ति या हलादमी शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं। यह हलादमी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उसके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। जब जीवात्माएं अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में होती हैं तो उनकी एकमात्र व्यस्तता या व्यस्तता कृष्ण या विष्णु की पुष्टि होती है। यही हाल महात्मा का है। यदि कोई महात्मा नहीं होता तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला होता है। ऐसे मानसिक रूप से पंगु दुरात्माओं को भगवान की बहिरंगा शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है।
ठीक है, तो भगवान की कितनी शक्तियां हैं? नहीं, अनंत शक्तियां हैं। वैसे केवल तीन भाग में उनको विभाजित किया गया है बस। वैसे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान की एक शक्ति है, या कह सकते हैं भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन इन अनंत शक्तियों के विभाजन या मूल ये तीन श्रेणियां बताई जाती हैं। तो कौन से हैं ये तीन श्रेणियां? अंतरंगा शक्ति, फिर बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति क्या है? अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी, उन्हीं का विस्तार है। कौन से श्लोक से ये पता चलता है? प्रभुपाद यहाँ कहाँ बिना देखे बताइए। महात्मानस तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिं अव्ययम्। तो कौन से इस श्लोक में कौन सा श्लोक श्रीमती राधारानी को संबोधित करता है? दैवीं प्रकृतिम, प्रकृतिम तो दैवी प्रकृति है, जड़ प्रकृति नहीं, दैवीं प्रकृतिम। तो ये श्रीमती राधारानी या लक्ष्मी देवी है। तो अंतरंग शक्ति के अंतर्गत कौन रहते हैं? महात्मा। महात्माओं के लक्षण क्या होते हैं जब वो अंतरंग शक्ति के अंतर्गत होते हैं? हाँ नहीं, आगे तात्पर्य में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? जब जीव अंतरंग शक्ति के नियंत्रण में रहता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? वो क्या प्रदर्शित करते हैं? क्या प्रदर्शित करते हैं? फिर से पढ़िए।
तो वे अपनी प्राकृतिक वैध सक्रियता प्रदर्शित,
अपने प्राकृतिक वैध सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है कि जीव सक्रिय है, स्वरूप से क्रियाशील है जीव। इसे जीव को विचारहीन क्रियाहीन बनाने की जो चेष्टा है मायावादी आदियों द्वारा, ये एक मिथ्या है, ये कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मूल रूप से स्वभाव से जीव क्रियाशील है। और जब ये जीव भगवान के अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है तो फिर उसकी प्राकृतिक या क्रियाशीलता जो है, जो स्वाभाविक है, वो प्रकट होती है या प्रदर्शित होती है। और जब महामाया के अंतर्गत वही जीव रहता है तो क्या होता है? फिर क्या होता है? जब अंतरंग शक्ति के अंतर्गत होता है जीव तो किसको प्रसन्न करता है? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं होता, और कोई दूसरा प्रयोजन या इच्छा नहीं होती है ऐसे जीव की। परंतु भगवान के बहिरंगा शक्ति महामाया के वश में आकर जीव क्या करता है? भोग करता है, यहां अपने इंद्रियों को तृप्त करता है। इंद्रियों को तृप्त करके तरह तरह के भोग सूक्ष्म और स्थूल रूप में करना चाहता है। दो प्रकार की इंद्र तृप्ति बताए गए हैं इस तात्पर्य में। कौन से हैं दो प्रकार की इंद्र तृप्ति? व्यक्तिगत और विस्तीर्ण। तो ये कौन समझाएंगे? व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति क्या है और विस्तीर्ण इंद्र तृप्ति क्या है, आप समझाइए। हाँ बहुत अच्छा। तो व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति मतलब हमारे निजी के शरीर और मन के लिए हम कुछ कर रहे हैं। जैसे हम जब अच्छा भोजन खाते हैं तो ये किसका उदाहरण है? व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति का। लेकिन हमारे परिवार का सदस्यों को खिला रहे हैं, बच्चे को खिला, खाओ खाओ, अच्छे आम खाओ, ये खाओ, उनको बहुत आनंद आता है। तो ये किस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है? विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति। तो हमारे शरीर से जो संबंधित हैं उनकी सेवा करने से जो रस प्राप्त होता है, जो सुख प्राप्त होता है, इसे विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। जैसे कि हमारा कुटुंब, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, देश है, इन सब की सेवा करने से जो हमें आनंद या सुख मिलता है वो विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति है। तो जब जीव महामाया के चंगुल में फंस जाता है तो वो व्यक्तिगत या विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगा रहता है, जो कि उसके प्राकृतिक कार्य नहीं है। केवल जब जीव भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है उस समय उसकी प्राकृतिक क्रियाशीलता का प्रदर्शन होता है, ठीक है। और ये प्राकृतिक क्रियाशीलता क्या है? ये है भक्तिमय सेवा, भगवान की भक्तिमय सेवा, ये जो कि भगवान, ये जो जीव का स्वरूप है। जीवे स्वरूप होय कृष्णे नित्य दास, तो ये दासत्व की भावना प्रकट हो जाती है और माया के चंगुल में फंस के झूठे प्रभुत्व की भावना प्रकट होती है। जीव तो सदैव दास है परंतु भोगने के प्रयास करने की वजह से उसे भी पुरुष कहा गया है, झूठा पुरुष है। पुरुष मतलब भोक्ता। पुरुषो प्रकृति स्थो ही भुंते प्रकृति जार गुणा कारणम गुण संगोस्य सत असत योनि जन्मसु। क्योंकि जीव दास होने के बजाय प्रभु होने की चेष्टा कर रहा है, इसलिए यहां इस भोग वृत्ति के कारण उसे सत असत योनियों को स्वीकार करना पड़ता है। तो ये दो चीजें हैं, तो तटस्था शक्ति या तो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आ सकता है या आ सकती है या तो बहिरंगा शक्ति, और दोनों शक्तियों के अधीन होने पर लक्षण या क्रियाशीलता अलग अलग रूप से प्रदर्शित होती है, ठीक है। हाँ, तो इसका सार अब यहां इस चार्ट पे हम देखेंगे। नहीं ये नहीं, इसके पहले और एक होना चाहिए, और एक था ना वो अंतरंगा बहिरंगा शक्ति का। अरे भूल गए, भूल गए लिखना। तो ये वाला शायद भूल गए, दो नंबर अच्छा कोई बात नहीं, अभी जल्दी से कर लेते हैं जो बोर्ड के ऊपर। हाँ अच्छा, तब तक हम आगे पढ़ेंगे। हाँ पढ़िएगा, आगे पढ़िए।
निसंदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के वश में है, जिसका कार्य उन्हें त्रिविध तापों में रखना है। ये है अधिदैविक क्लेश, देवताओं के द्वारा उत्पन्न क्लेश या दुचाल तथा दुखान, आदि भौतिक क्लेश, अन्य प्राणियों द्वारा उत्पन्न क्लेश यथा कीड़ों या शत्रुओं द्वारा उत्पन्न तथा आध्यात्मिक क्लेश, अपने शरीर तथा मन द्वारा उत्पन्न क्लेश यथा मानसिक तथा शारीरिक क्लेश, दैव भूतात्मक बद्ध जीव बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण द्वारा है बारंबार जन्म मरण रोग तथा मृत्यु का होना। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे कि वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे।
ठीक है, तो फिर तीन प्रकार के क्लेश कौन से हैं? कौन से? फिर से पहला अधिदैविक, अधि आधि नहीं अधि अधिभौतिक क्या है? अधिभौतिक क्लेश मतलब अन्य लोगों के द्वारा, अन्य जीवों के द्वारा, अन्य प्राणियों के द्वारा उत्पन्न जो क्लेश होते हैं, दुख होता है, उसे अधिभौतिक क्लेश कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या है? मच्छर काटते हैं, फिर कोई हमको कुछ कह देता है, मैं तकलीफ देता है, अधिभौतिक क्लेश। दूसरा अधिदैविक क्लेश क्या है? ये जो देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है, यथा भूकंप, सूखा, बाढ़, तो देवताओं के द्वारा क्यों क्यों ऐसे कहा जाता है ये सब देवताओं के कारण हो रहा है? उनके कंट्रोल में है। कैसे? हाँ, तो देवतागण कौन है? वो इस ब्रह्मांड के प्रशासन या ब्रह्मांड के व्यवस्थापन के वो मंत्री हैं। किसी को वर्षा का विभाग दिया है, किसी को उष्णता और प्रकाश का विभाग दिया है, किसी को वायु का विभाग दिया है। तो ऐसे अलग अलग पुण्यवान जीवात्माओं को, जिनको हम देवता कहते हैं, देव कहते हैं, वे सारे सृष्टि के व्यवस्थापन को संभालते हैं और कर्मों के अनुसार, जीवों के कर्मों के अनुसार वो प्रकृति की आवश्यकताओं को पर्याप्त मात्रा में, सही मात्रा में प्रदान करते हैं या तो नहीं करते हैं। कभी कभी कम मात्रा में देते हैं, कभी अधिक मात्रा में देते हैं, ये सब कर्मों के कारण होते हैं। तो ये है अधिदैविक क्लेश। और तीसरा आध्यात्मिक, नहीं आध्यात्मिक क्लेश मतलब आध्यात्मिक, अध्यात्मिक क्लेश अ होना चाहिए, आध्यात्मिक नहीं अध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब मतलब अलग हो जाता है। आध्यात्मिक है, ठीक है, आध्यात्मिक क्लेश। अधि अधि आत्मिक, अधि भौतिक, अधि दैविक, आध्यात्मिक क्लेश। ठीक है, ये तीन प्रकार के कष्ट हैं। ये आध्यात्मिक क्लेश कैसे होते हैं? अपने मन और शरीर से उत्पन्न होने वाले क्लेश, यथा
बीमारी है,
बीमारी
मन में अगर जा रहा है, अपने आप में क्लेश कर रहे हैं,
तनाव, टेंशन, ठीक है, ये आध्यात्मिक क्लेश। तो ये त्रिविध ताप कहलाते हैं। त्रिविध ताप, तीन प्रकार के ताप। हाँ, शत्रु में हमारे शत्रु हमको कष्ट देते हैं ना, शत्रुओं द्वारा जो कष्ट उत्पन्न होता है वो भी अधिभौतिक क्लेश है। ठीक है, लिख लिया आप सबने? ये तो बहुत प्राथमिक चीजें हैं, लेकिन इनको अच्छी तरह से जान लेना बहुत आवश्यक है। इसको घुमाएंगे, तो बद्ध जीव की चार मुख्य समस्याएं जिनका वर्णन अभी हम इस परिच्छेद में पढ़ चुके हैं। भगवद गीता में क्या कहा गया है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख दोषानुदर्शनम, सॉरी गलती हो गई, हम देख रहे थे कितने भक्त सोए हैं, कितने जागे हुए हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये दोष है ये जगत का, ये चार दोष हैं कि हरेक जीव को हरेक प्राणी को जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी होती ही होती है, और जब तक ये चार चीजें हैं हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते, और जब तक ये भौतिक शरीर है हमें परिश्रम करना पड़ता है। परंतु किस प्रकार हमें परिश्रम करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं करना चाहिए, इस विषय में मार्गदर्शन करने के लिए श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत ग्रंथ में दिया है। ये नीचे वाला दूसरा है, इसे अब मत लिखिए, इसके नीचे वाला आधा भाग है, ये आगे चल के चर्चा करेंगे, केवल कागज वेस्ट नहीं करना चाहते थे इसलिए एक के अंदर हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा वो चार्ट लगा देंगे। अब थोड़ा पीछे आइए, जब शुरुआत से कई तीन चार परिच्छेदों को पढ़ा था हमने, अंतरंगा तीन प्रकार की शक्तियों को, पुट इट, ये लग दीजिए, लगा दीजिए, वो निकालना होगा, ऐसे कर लीजिए। तो भगवान कृष्ण की तीन शक्तियां कौन सी है? तीन शक्तियां, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी या लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी कौन है? वो श्रीमती राधा रानी की विस्तार है, तो ये अंतरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति कौन है? महामाया देवी। क्या लिखा था? माया माया, महामाया, मां नहीं, महा, महामाया, महामाया देवी, ये बहिरंगा शक्ति है। और तटस्था शक्ति क्या है? जीव। तो जब जीव अंतरंगा शक्ति या श्रीमती राधा रानी या उनके विस्तार लक्ष्मी देवी के आश्रय में जाकर आश्रय लेता है तो फिर वो महात्मा कहलाता है, वो जीव महान आत्मा, और उसका कार्य होता है भक्तिमय सेवा करना भगवान कृष्ण का। वही जीव जो तटस्था शक्ति है, जब महामाया देवी के शरण में जाता है, बहिरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करता है, तो वो दुरात्मा कहलाता है। और उसके कार्य क्या होते हैं? इंद्रिय तृप्ति, ये उसके कार्य होते हैं। तो यहां अंतरंगा शक्ति के लिए भगवद्गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक का उल्लेख है, महात्मानस्तु माम पार्थ। तो आप सब समझ गए ना इस चार्ट को? ठीक है, आप सबने लिख लिया। अभी अपने शब्दों में कहिए आप कि इस चार्ट में क्या लिखा है, बिना देखे हुए आप बताइए। कौन बताएंगे आप में से? जिन्होंने पहले उत्तर नहीं दिए आप बताइए इस चार्ट में क्या लिखा है। ये सारे तीन चार परिच्छेदों का ये सार है, आप बताएंगे। कौन से? कौन है अंतरंगा शक्ति? महामाया अर्थात दुर्गा देवी है। हाँ, और कौन कौन है ये महात्मा? कौन सी शक्ति है ये? कौन सी शक्ति है? तटस्था शक्ति, ये जीव है। तो कौन अंतरंगा शक्ति के अधीन होते हैं? जीव जब अंतरंगा शक्ति के अधीन होते हैं तो क्या कहलाते हैं? महात्मा। और उनके कार्य क्या होते हैं? भगवान की भक्तिमय सेवा होती है। और वही जीव जब बहिरंगा शक्ति के अधीन हो जाता है तो फिर दुरात्मा कहलाता है। और उसके कार्य क्या होते हैं? इंद्रिय तृप्ति, चाहे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति या विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति। अब देखिए, आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु का व्यक्तित्व होता है। आध्यात्मिक जगत में कोई वस्तु जड़ नहीं है, जड़ पदार्थों से नहीं बना हुआ है जैसे कि भौतिक सृष्टि में पाया जाता है। इसलिए जब हम शक्ति की बात करते हैं, शक्ति के पीछे भी कोई व्यक्ति है, इनका भी कोई व्यक्तित्व होता है। इसलिए जब हम कहते हैं अंतरंगा शक्ति, तो तुरंत यहां प्रभुपाद जी श्रीमती राधा रानी का नाम ले रहे हैं या श्रीमती लक्ष्मी देवी का नाम ले रहे हैं। दूसरी ओर बहिरंगा शक्ति, हालांकि भौतिक जगत में है फिर भी एक अधिष्ठाता देवी है, महामाया देवी या दुर्गा देवी। ठीक है, अच्छा आगे पढ़िए। अभी
हर व्यक्ति को अन्य वस्त्र धन तथा,
अभी यहां से वास्तव में अत्याहार, ये पहला जो विषय है, पहला दोष है, इसकी चर्चा शुरू हो रही है इस वाक्य से। ठीक है, अत्याहार।
हर व्यक्ति को अन्य वस्त्र धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान ग्रहण करने वाले जीव न तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं न संग्रह करते हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतया न कोई आर्थिक समस्या होती है न आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुनेंगी और चली जाएगी, लेकिन मनुष्य तो पूरा बोरा उठा ले जाएगा, उसके पेट में जितना आएगा खाएगा और जो बचेगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से अधिक का यह संग्रह अत्याहार वर्जित है। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है।
देखिए, सारे दुनिया की समस्या क्या है? अत्याहार, अति आहार। जब भक्ति विनोद ठाकुर की टीका पढ़ेंगे उस समय हम ये और इसकी व्याख्या करेंगे। परंतु यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं अत्याहार के बारे में, पहले देखिए शब्दार्थ में, देखिए अत्याहार का अर्थ क्या दिया है प्रभुपाद जी ने। अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना, धन संग्रह करना। तो अति आहार, आहार ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा करना, अति आहार या अत्याहार। आहार का मतलब है भोजन, परंतु यहां इसका अभिप्राय यह भी है धन संग्रह। तो दोनों आवश्यकता से अधिक नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते, अगर ऐसा करते हैं तो क्या लाभ होता है? किसी चीज की कमी नहीं आती, बड़े आसानी से शरीर का भरण पोषण किया जा सकता है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। अगर हरेक व्यक्ति केवल जितना आवश्यक है उतना ही खाएगा और धन संग्रह करेगा तो शरीर के भरण पोषण की समस्याएं इतनी विकट नहीं हो जाएंगी। तो प्रभुपाद यहां अंत में क्या कह रहे हैं, यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। नहीं, इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है। किसके कारण? संग्रह के कारण, अत्याहार के कारण। तो पशु समाज में और मनुष्य समाज में अंतर क्या है?
पशु समाज में संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है।
पशु समाज में संग्रह की प्रवृत्ति कम है, इतनी ज्यादा नहीं है। मनुष्य समाज में है। क्या उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने यहाँ, क्या उपमा दी? हाँ, ये मनुष्य का स्वभाव है। बोरा का बोरा उठा के ले जाएगा, वो जानता है कि वो मुट्ठी भर चावल ही खा पाएगा एक समय, लेकिन अपने भंडार में रख लेगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि दूसरे विश्व युद्ध के समय या पहले विश्व युद्ध के समय, दूसरे विश्व युद्ध में एक व्यापारी थे कलकत्ता में, उसके घर में एक मंदिर था, लेकिन मंदिर में आराध्य देव कौन थे पता है आपको? हिटलर। किसने कहा आपको? कैसे पता चला आपको? हिटलर। क्यों हिटलर थे उनके आराध्य देव? क्योंकि हिटलर की वजह से दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया। और विश्व युद्ध के समय क्या हुआ? काला बाजार बहुत चल रहा था, क्योंकि सब चीजों की कमी थी। तो उस व्यापारी ने क्या कर लिया, बहुत संग्रह कर लिया, बहुत कुछ अपने संग्रह करके फिर काले बाजार में बेचे जा रहा था। तो खूब पैसे बनाए उसने, बहुत धनी हो गया। तो इतना धनी हो गया, फिर सोचने लगा कि ये हिटलर साहब के कृपा से हुआ। अगर हिटलर नहीं होता, युद्ध नहीं होता, तो काला बाजार नहीं कर पाता और मुझे इतना धन नहीं मिलता। तो मेरे धन मिलने के कारण हिटलर हैं, तो मेरे लिए यही आराध्य हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद महाराज को गोवर्धन लीला के पहले समझाते हैं ना, कि हमारे कर्म के साधन, जीविका के साधन ही आराध्य हैं हमारे लिए। और जब कर्म मीमांसा आदि अनेक मिथ्या दर्शनों का वर्णन करते हैं, उसे हम ये भी कहते हैं। तो इस व्यापारी ने इस सिद्धांत को पालन किया था, तो संग्रह बहुत किया। तो आजकल ये समस्या दुनिया में है। प्रभुपाद जी जब कहते हैं कि इस समय सारा विश्व इसके कारण कष्ट उठा रहा है, ये कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं। एक अन्य जगह प्रभुपाद जी कहते हैं, शायद ईशोपनिषद में, कि ये जो अधिक जनसंख्या की बात कर रहे हैं लोग, ये वास्तव में समस्या नहीं है, ये केवल एक भ्रम है, ये केवल एक प्रोपेगेंडा है जो ये लोग सब फैला रहे हैं। लेकिन प्रकृति पूरी तरह से समर्थ है सारे प्रजा का भरण पोषण करने के लिए। प्रकृति में इतनी ताकत है। परंतु क्या हो रहा है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस भूमि में अनाज का उत्पादन हो सकता है या होना चाहिए, उस भूमि में अनाज के बजाय क्या क्या करते हैं? पहली बात तो ये है, चाय, कॉफी आदि ऐसी चीजें बनते हैं। दूसरी बात, और बड़े बड़े खेत की जगह में बड़े बड़े कारखाने खड़े कर देते हैं। और अंततः प्रभुपाद जी कहते हैं, फिर भी जितना उत्पादन हो रहा है सारे विश्व भर में, सारे विश्व भर की जनसंख्या को खिलाने में काफी है। परंतु जो अमीर देश है वो क्या करते हैं, जब उनका उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो गरीब देशों को देते नहीं है, क्या करते हैं? समुद्र में डाल देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि अनाज की कीमत जो है बाजार में ऊपर ही रहे, क्योंकि जब बाजार में बहुत सारा माल आ जाएगा तो मंदी हो जाएगी। मंदी कहते हैं ना, जब व्यापार आप करते हैं मंदी और तेजी कहते हैं ना, मंदी आ जाएगी तो फिर सब कीमत सबकी कम हो जाएगी, उनका मुनाफा कम हो जाएगा। तो देखिए ये सब भावनाओं की कृत्रिम अवस्थाओं की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, अनाज की कमी होना, ये सब होना। ये वास्तव में अगर व्यक्ति आत्याहार नहीं करे तो ये सब समस्याएं नहीं होंगी। इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि देखो पशु समाज में और मनुष्य समाज में अंतर क्या है। जितना भी नुकसान इस पृथ्वी को हुआ है वो किसने किया है? पशुओं ने किया है या मनुष्यों ने किया है? मनुष्य, क्योंकि पशु समाज में अत्याहार की समस्या बहुत कम पाई जाती है। मनुष्य समाज में प्राय हरेक व्यक्ति अधिक से अधिक संग्रह करने का प्रयास करता है, इसलिए मनुष्य ही सबसे खतरनाक व्यक्ति है, प्राणी है इस पृथ्वी के ऊपर। अमेरिका में एक जू है, चिड़ियाखाना, और वहां पर एक भाग है जिसमें ऐसे लिखा गया है कि खतरनाक जानवर। बाकी जितने जानवर हैं वो है ठीक ठाक, जैसे कहीं हिरन है कहीं कुछ है, लेकिन एक भाग है जिसमें खतरनाक जानवर बताया जाए। पहले आप प्रवेश करेंगे तो आप शेर देखेंगे, फिर सिंह देखेंगे, लेकिन एक जगह जाएंगे वहां देखेंगे अरे पिंजरा तो खाली है, ऐसे देखेंगे तो एक आईना देखेंगे। क्या तात्पर्य इसका? ऊपर लिखा सबसे खतरनाक जानवर, और आदमी देखता है तो क्या देखता है? अपना ही चेहरा देखता है। ये मनुष्य सबसे खतरनाक जानवर वास्तव में यही है। अब ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने वाले कौन है? सब पढ़े लिखे लोग ही है ना, बेचारे अनपढ़ लोग तो नहीं करते। ये बड़े बड़े बॉम्ब बॉम्ब कौन बनाते हैं? बड़े बड़े पीएचडी वैज्ञानिक इंजीनियर ये तो लोग बनाते हैं ना। तो सबसे बड़ा नुकसान मनुष्य ने किया है, क्योंकि उसके अंदर ये सबसे बड़ी बीमारी है अत्याहार। अब हम थोड़ी आगे चलते हैं यहां से, जहां आपने पढ़ना बंद किया। अब आगे चलते हैं एक दो पन्ने, हाँ पेज 26 इस किताब में 26 पेज पे, क्योंकि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अनुवृत्ति टीका में अत्याहार के बारे में और कुछ बताया गया है। लेकिन इसके पहले आप जरा इसको करते हैं, इसको उतार दीजिए। हाँ, और इसके पीछे क्या है देखिए, नहीं इसके पहले हाँ कहाँ गया अत्याहार, हाँ हाँ ये ठीक है। अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना, मनुष्य समाज और पशु समाज जगत में अंतर। उदाहरण चावल का बोरा, ये उदाहरण बहुत अच्छा है, लोगों के मन में दिमाग में बैठ जाता है। प्रचार करते समय आप दूसरों को समझाएंगे ना तो ये उदाहरण दीजिए, तुरंत लोग उस बात को मान्य कर लेंगे। ठीक है, अभी अपने किताब के पन्ने घुमाइए। इस किताब में 26 नंबर पे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी अनुवृत्ति टीका में लिखते हैं कि, आपको मिल गया
पेज नंबर 22 पे, हिंदी की पेज नंबर 22,
ये भी हिंदी किताब है लेकिन अच्छा, तो आपकी किताब में 22 पेज पे है। जिस परिच्छेद में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन शब्दों से शुरू होता है वो देखिए आप। क्योंकि इस परिच्छेद में भी अत्याहार के ऊपर श्रील भक्ति सिद्धांत टीका कर रहे हैं। सबको मिल गया? ठीक है, अब आप पढ़िए जोर से।
भक्ति सिद्धांत संस्कृत अपने अनुवृत्त के टीका में लिखते हैं कि मानसिक चिंतकों या शुष्क चिंतकों ज्ञानियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास अत्याहार आवश्यकता से अधिक सुंदर के अंतर्गत आता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार दार्शनिक चिंतकों द्वारा कृष्ण भावनामृत से विभिन्न शुष्क दर्शन पर पौधे के पौधे लिखने के प्रयास पूर्णतया व्यर्थ है। आर्थिक विकास पर अनेक ग्रंथ लिखने वाले कर्मियों का भी कर्म भी अत्याचार की कोटि में आता है। इसी तरह जिन्हें कृष्ण भावनामृत की कोई इच्छा नहीं है और जो अधिकाधिक वस्तुओं को पाने के लिए इच्छुक रहते हैं, चाहे वह वैज्ञानिक ज्ञान हो या धन का लाभ हो, वे सब अत्याहार के क्षेत्र में आते हैं।
हाँ ठीक है,
आर्थिक विकास पर अनेक ग्रंथ लिखने वाले कर्मी का कर्म भी अत्याहार के क्षेत्र में आता है।
इसको घुमा लीजिए। हाँ ये नहीं, ये नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अनुवृत्ति टीका, अनुवृत्ति मात्रा छोटी होनी चाहिए, ह्रस्व अनुवृत्ति, ठीक है। टीका अत्याहार के और उदाहरण, हम केवल ये सुन चुके हैं कि अत्याहार मतलब अधिक भोजन करना या अधिक धन संग्रह करना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और कह रहे हैं, आगे बात को बढ़ा रहे हैं कि अत्याहार के और भी कोई मतलब होते हैं। क्या है? जैसे हम अभी पढ़ चुके हैं, ज्ञानियों द्वारा मानसिक तर्क के आधार पर ज्ञानार्जन एवं ग्रंथ लिखना, ये भी अत्याहार हुआ। जो ज्ञानी लोग ज्ञानार्जन करते हैं, संग्रह करते हैं ज्ञान का, वो तर्क वितर्क के आधार पर मनगढ़ंत ढंग से, तो उसे भी संग्रह, उसे भी अत्याहार कहते हैं। ज्ञानियों द्वारा मानसिक तर्क के आधार पर ज्ञानार्जन एवं ग्रंथ लिखना, और ऐसे ज्ञानार्जन करके फिर ग्रंथ लिखते हैं, ये सब अति आहार के क्षेत्र में आता है। दूसरा, कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति जो धन वैज्ञानिक ज्ञान आदि के अधिक अधिक प्राप्त करना चाहता है, तो बहुत कोई व्यक्ति बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता है, एमएससी पीएचडी डीएससी बहुत कुछ करता है, और से ज्यादा ज्ञान भौतिक सृष्टि को समझने के लिए डिग्रियां, डिग्री के बाद डिग्री प्राप्त करते जाता है विश्वविद्यालय से। मुझे याद है 15-20 साल पहले एक नेता थे किसी दूसरे प्रांत में, उनके 20 डिग्रियां थी, 15 या 20 डिग्रियां विश्वविद्यालय से, बीए बीकॉम एलएलबी ये पीएचडी ये वो सारे जितने भी अक्षर हैं सब उनके डिग्रियों में आ गए। ये भी सब अत्याहार है, कृष्ण भावनाहीन। तो कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति का धन और वैज्ञानिक ज्ञान आदि अधिक प्राप्त करने का जो प्रयास है, ये भी अत्याहार कहलाता है। साथ साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये भी कहते हैं, भुक्ति कामी सिद्धि कामी मुक्ति कामी ये सब अत्याहारी हैं। भुक्ति कामी क्या चाहता है? अधिक से अधिक भोग। सिद्धि कामी क्या चाहता है? अपने योगाभ्यास से विशेष शक्तियों को प्राप्त करना चाहता है। मुक्ति कामी क्या चाहता है? ऐसे मानसिक तर्क के आधार पर ज्ञानार्जन करता है जिससे कि वो संसार से मुक्त होकर निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहता है। ये सब अत्याहार के उदाहरण हैं। और फिर आगे इसकी पुष्टि एक उदाहरण द्वारा प्रभुपाद जी करते हैं। ठीक है, सबने लिख लिया। ठीक है, अगला परिच्छेद पढ़िए, इसी से संबंधित है जो नीचे लिखा है। धनी व्यक्ति जिसका अगला जन्म एक मोची के परिवार में होता है, उससे संबंधित ही अगला परिच्छेद है। जहां से आप पढ़ रहे थे आप उसी का अगला परिच्छेद पढ़िए। कर्मी जन
भावी पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं, क्योंकि वे अपने भविष्य को नहीं जानते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए अधिकाधिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने के कारण यह भी नहीं जान पाते कि अगले जीवन में उनकी स्थिति क्या होगी। इस बात को प्रत्यक्ष करने वाली अनेक घटनाएं हैं। एक बार एक कर्मी ने अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली, लेकिन आगे चलकर कर्म के अनुसार उसे एक मोती के घर में जन्म लेना पड़ा जो इस इमारत के पास स्थित था, जिसे उसने पूर्व जन्म में अपने लड़कों के लिए बनवाया था। ऐसा संयोग हुआ कि जब यह मूर्ति अपने पहले वाले मकान में आया तो उसके पहले वाले पुत्रों तथा पौत्रों ने उसे जूतों से पीटा। जब तक कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं लेते, तब तक वे व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन बिताते रहेंगे।
तो ये अत्याहार का उदाहरण। तो ऐसे कर्मी बहुत परिश्रम करते हैं। कर्मीजन भावी पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं। क्यों करते हैं श्रम? क्या बताया है वहां? क्योंकि वो अपने भविष्य की स्थिति को नहीं जानते हैं। मैं भविष्य में क्या होने वाला हूं, मैं कहां जन्म लेने वाला हूं, मेरा क्या होगा आगे चल के, इस बात का ज्ञान उनको नहीं है, इसलिए वो अधिकाधिक ज्ञानार्जन करते हैं। और देखिए विडंबना क्या परिस्थिति हुई इस बेचारे की। जिन व्यक्तियों के लिए उसने सारा जीवन भर परिश्रम किया, उन्हीं व्यक्तियों ने उसे जूतों से पीट दिया, है ना? ये है दुनिया की रीति। तो ये है अत्याहार। तो फिर से पीछे आइएगा, जहां तक चावल के बोरे की बात थी, कौन से पृष्ठ में है आपकी किताब में? 18। तो फिर से 18 नंबर पेज पर आइएगा। अच्छा, अब अत्याहार का ही विषय चल रहा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं इस अत्याहार शब्द के बारे में, ये हम सुन लेते हैं। तो कृपया इसको घुमाइए, पीछे वाला, इसको पीछे वाला। बहुत महत्वपूर्ण बात भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा और इसको लिख लीजिए। पहले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की टीका, वो कहते हैं कि आहार का मतलब है भोजन या खाना, ये तो साधारण मतलब है, परंतु भोजन ये शब्द का और एक अर्थ है इंद्रियों के विषयों का भोग करना। भोजन भोग, ये भी भोजन का एक अर्थ है। बद्ध जीव ऐसे भोग किए बिना जी नहीं सकता, अर्थात इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों से संपर्क करना ही होगा, इसके बिना बद जीव जी ही नहीं सकता। परंतु यह कार्य भोग की भावना में नहीं किए जाने चाहिए। अतः अत्याहार का मतलब है इंद्रियों के विषयों को भोग के भावना में स्वीकार करना, अर्थात इंद्रिय तृप्ति करना, भोग वृत्ति। अर्थात अत्याहार का मतलब भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भोग वृत्ति। परंतु इन विषयों का भगवान की कृपा समझ के उतनी ही मात्रा में स्वीकार करना चाहिए जितना आवश्यक है। तो यह अत्याहार नहीं है, यह युक्त वैराग्य है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के टीका को हमने सार रूप में यहां प्रस्तुत किया है। आखिरी लाइन, तो यह अत्याहार नहीं है, यह युक्त वैराग्य है। तो आप सबने लिख लिया। अंतिम लाइन है तो यह अत्याहार नहीं है, यह युक्त वैराग्य है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि प्रथम श्लोक में ही रूप गोस्वामी पाद जिह्वा वेगम की बात कर चुके हैं और उदर वेगम की बात भी कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है?
खाने पीने वाला काम
उसकी बात तो हो चुकी वहां पर। तो अगर यहां आहार, अति आहार, अगर यहां आहार शब्द का अर्थ अगल केवल भोजन होता तो ये एक प्रकार का दोहराना होता कि पहले उन्होंने वैसे भी पहले श्लोक में कह दिया, दोबारा इसे क्यों यहां कह रहे हैं, दोहराने की क्या आवश्यकता है। जबकि ये जितने 11 श्लोक हैं रूप गोस्वामी ने सूत्र रूप में सभी लिखा है, बड़े इसका सार। तो ऐसे सूत्र रूप में जब कुछ लिखा जाता है तो किसी चीज को दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहां अगर रूप गोस्वामी केवल आहार मतलब भोजन खाना इस संदर्भ में इस दृष्टि से कहना चाहते थे तो फिर वो पहले श्लोक में उदर वेगम जिह्वा वेगम क्यों कहते हैं? इसका मतलब है कि आहार शब्द का अर्थ हमें कुछ और समझना चाहिए, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आहार शब्द या भोजन शब्द का, आहार मतलब भोजन, और भोजन का एक विस्तारित अर्थ ये है कि भोग करना, इंद्रियों के विषय का भोग करना। अच्छा, जो भी बातें यहां बताई गई हैं आप में से कौन समझाएंगे बिना देखे हुए भी? इसी बात को आप समझाइए बिना देखे। आपने समझ लिया ना आपने क्या लिखा है? अभी अभी अपने शब्दों में समझाइए।
ऐसे भोग से क्या होता है? भोग सब भी क्या है? भोग कौन सा है? जैसे खाना पीना ये भी भोग ही है।
आपने पढ़ ली, अभी समझाइए आप पहले, फिर प्रश्न उत्तर करते हैं।
हम नित्य के लिए जो भोग करते हैं, हम जो भोग करते हैं मतलब जो भी खाना अपने जीवन यापन के लिए करते हैं वो भोग नहीं है, अगर जीवन यापन से ज्यादा करते हैं वो इंद्रिय भोग है, तो उसको जो करना भी वो भी अत्याहार होता है।
बिल्कुल। वैसे देखिए, अगर भोजन का अर्थ है कि इंद्रियों के विषयों का भोग करना, भोजन अर्थात इंद्रियों का स्पर्श जब इंद्रियों के विषयों से होता है, ये तो भोग है ना। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एवते, है ना, संस्पर्श जा भोग। तो इंद्रियों का संस्पर्श जब विषयों से होता है इसको भोग कहते हैं, ये संसार का सुख है तथा कथित सुख। तो इंद्रियों को विषयों से संपर्क करना ही होगा, इसके बिना तो जीव रह ही नहीं सकता। जब हम कुछ खाते हैं, भले हम कम खा रहे हों, बिल्कुल जितना आवश्यक है उतना ही खा रहे हों, फिर भी इंद्रियों को जिह्वा को स्पर्श तो करना पड़ेगा ना, स्वाद से कुछ तो करना होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर यह कहते हैं बद्ध जीव ऐसे भोग किए बिना जी ही नहीं सकता। अर्थात हम जब कहते हैं कि हमें इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहिए, यह हो ही नहीं सकता। इंद्रियों को तृप्त किए बिना हम जी नहीं सकते, तो इंद्रियों को तृप्त करना है, परंतु मात्रा देखना चाहिए, कितनी मात्रा में कर रहे हैं और किस भावना से कर रहे हैं, ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब भोग की वृत्ति हमारे अंदर होती है और इस वृत्ति से हम भोग करते हैं तो वो गलत है। किस भावना से हमें इंद्रियों को तृप्त करना चाहिए यह आगे बताते हैं। परंतु इन इंद्रियों को भगवान की कृपा समझ के उतनी ही मात्रा में स्वीकार करना चाहिए जितना आवश्यक है। अगर ऐसे किया जाए तो फिर ऐसे भोग में अत्याहार का दोष नहीं आता है। आप समझ रहे हैं ना? जब उचित मात्रा से अधिक या भोग वृत्ति इस भावना से हम विषयों का भोग करते हैं तो वो अत्याहार कहलाता है। ठीक है, अभी आप समझाइए इस भक्ति विनोद ठाकुर जी के तात्पर्य को सार रूप में समझाइए। हाँ जी कीजिए।
देखिए, अगर समझो हम लोग, हमारी इंडिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंडिया है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट विषय हो गए। जैसे मान लो डिफरेंट विषय आप किसी को पढ़ने का शौक है, अगर वो दिन रात ही पढ़ना है अली यूजलेस बुक्स, तो उसको कोई फायदा नहीं है। सीमित मात्रा में पढ़े पर वो कुछ पर्टिकुलर भगवान के विषय में हो तो वो पढ़े, तो उसका उपयोग होगा, तो अत्याहार नहीं होगा।
ठीक है, एक एग्जाम्पल, लेकिन जैसे सार है जो कहा आपने सही कहा, लेकिन यहां जो लिखा गया है वो सार में आप समझाइए। हाँ जी, अभी आपने और कौन? हाँ बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए।
आहार भोजन और खाना
नहीं, आहार का मतलब एक ही, भोजन। भोजन का एक अर्थ है
खाना
और दूसरा अर्थ है
इंद्रियों
इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को भोग करना। और
परंतु
और अत्याहार क्या है? भोग की भावना से इंद्रियों के विषयों को स्वीकार करना। और मात्रा, मात्रा के बारे में क्या? अधिक मात्रा में भी स्वीकार करना, दोनों चीजें। हाँ और बोलिए।
लेकिन इंद्रियों के विषयों को हमें भगवान की कृपा समझ के उतने ही मात्रा में स्वीकार करने चाहिए जितना मात्रा की हमें आवश्यकता है, तो यहाँ अत्याहार नहीं है,
ठीक है, बहुत अच्छा। तो युक्त वैराग्य क्या है?
जीवन यापन के, सिर्फ जीवन यापन के लिए ही अपने इंद्रियों को विषय का भोग करते हैं तो वो अत्याहार नहीं है। अगर हम उससे ज्यादा खाने की इच्छा, इससे मात्रा में ज्यादा खाने की इच्छा, इससे ज्यादा स्वाद की खाने की इच्छा करते हैं तो वो इंद्रिय तृप्ति है, अत्याहार है।
तो इन विषयों को किस रूप में ग्रहण करना चाहिए? भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से हमें ये चार रोटी मिले हैं, भगवान की कृपा से ये सब्जी मिली है, पेट भरने के लिए चार रोटी काफी है लेकिन मैं 10 खा रहा हूं, तो फिर ये 6 अधिक जो है फिर वो अत्याहार हो गया। मेरे पास, मुझे जीने के लिए 1000 रुपए चाहिए, 10,000 चाहिए, जो भी चाहिए, परंतु मैं 1,00,000 संग्रह करके देख रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, तो ये अत्याहार हो गया, ठीक है। तो युक्त वैराग्य की परिभाषा क्या है? कौन से श्लोक से आप बता सकते? रूप गोस्वामी द्वारा ही यथारम। बहुत अच्छा। तो अभी शब्द भेद करके अर्थ समझाइए। अनासक्त विषया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये है युक्त वैराग्य। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं या तो अत्याहार है या युक्त वैराग्य है, ये दो चीजें, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? युक्त वैराग्य। तो वो भोग जो कि आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, भगवान की कृपा समझ के स्वीकार किया जाता है, भगवान की सेवा के लिए स्वीकार किया जाता है, वो युक्त वैराग्य है। और जो भोग आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्वीकार किया जाता है, भोग वृत्ति से स्वीकार किया जाता है, भगवान से उसका संबंध न देखते हुए किया जाता है, वो है अत्याहार, ठीक है। तो ये है अत्याहार शब्द का तात्पर्य, ठीक है ना। अच्छा, अब जब अत्याहार होता है, जब इच्छा होती है, तीव्र इच्छा, तो उसे और भी कोई दोष उत्पन्न होते हैं। अच्छा, भक्ति विनोद ठाकुर एक और बात बताते हैं कि जहां जिह्वा वेगम और उदर वेगम की बात हुई, ये समस्याएं केवल थोड़े समय के लिए रहती हैं। उदर वेग, उदर वेग कब होता है? जब भूख लगती है। भूख लगती है तो हमें क्या करना चाहिए? इसका निवारण का दमन कैसे करना चाहिए? उदर वेग का कृष्ण प्रसाद ग्रहण करके, और हम देख चुके हैं अधिक मात्रा में नहीं, समय समय पर, होटलों में नहीं, मिठाइयों की दुकानों में नहीं, इधर नहीं, वो है ना, इतनी सारी चीजें पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं तात्पर्य में। तो उदर वेग का दमन तब हो सकता है जब उदर हमको तकलीफ देता है। जब हमने भोजन कर लिया उसके बाद क्या, जब भर पेट, पेट भरा हुआ रहता है, उस समय क्या होता है? क्या ये उदर वेग कोई समस्या है उस समय? उस समय नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये एक नियम है जो कि नैमित्तिक नियम है, जो उदर वेग और जिह्वा वेग के लिए है। ये तभी ये लागू होते हैं जबकि उदर का वेग तीव्र हो जाता है, या जब खाने की इच्छा होती अचानक हम रसगुल्ले को देते, खाने की इच्छा होती है, तब भूख लगी होती है और स्वादिष्ट व्यंजन खाने की इच्छा होती है, लेकिन हर समय नहीं। हम बीमार होते हैं तो उस समय खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती है। तो पहले श्लोक में जितने भी सारे नियम बताए गए हैं, षड्वेगों की बात की गई है, वो केवल वो नियम उस समय लागू होते हैं निमित्त के अनुसार, जैसे वो परिस्थिति है उस हिसाब से, जैसे वो वेग आते हैं तो उनका निवारण करना पड़ता है या उनका दमन करना पड़ता है। परंतु यहां पर इस दूसरे श्लोक में जब अत्याहार की बात आती है और ये अत्याहार एक दोष कहा जाता है, तो ये एक नित्य नियम है, निमित्तिक नहीं। आप समझ रहे हैं?
नित्य
नैमित्तिक मतलब कभी कभी जो होता है, जैसे जैसे वेग ऊपर आते हैं तो इनका दमन करना चाहिए। पेट में बहुत भूख लग जाती है, पेट बहुत जलने लगता है, तो भूख लगी है तो क्या करना चाहिए? कृष्ण प्रसाद से दमन करना चाहिए। ये नैमित्तिक है, मतलब समय समय पर होता है, परिस्थिति के ऊपर। इसलिए पहला श्लोक जो है वो ऐसे नैमित्तिक एक नियम है, लेकिन ये दूसरे श्लोक में ये जो छह दोषों का वर्णन होगा ये नित्य नियम है, हर अवस्था में पालन करना चाहिए व्यक्ति को। इसलिए हालांकि अत्याहार में भोजन की बात भी आएगी, इसलिए फिर भी ये दोनों बातें अलग अलग हैं। आप समझ रहे हैं? कौन समझाएंगे इस बात को? बहुत अच्छी तरह से बताया है कि उदर वेग आदि ये कभी कभी होता है, भूख लगता है तो दमन कैसे करना चाहिए, किस तरह से कृष्ण भावना में करना चाहिए, उसका वर्णन रूप गोस्वामी ने किया है। परंतु संग्रह करने की जो इच्छा है ये तो नित्य रूप से चलती रहती है, इसीलिए इसका तो दमन हमेशा करना चाहिए, एक नित्य नियम है जो हमेशा चलता है, इसीलिए नियम हर समय के लिए लागू होता है। और उदर वेग का दमन करना केवल उस समय लागू होता है जबकि उदर कष्ट देता है, ठीक है ना? तो जब अत्याहार हम करते हैं, जब संग्रह करने की लालसा बढ़ती है, तो उस लालसा को तृप्त करने के लिए व्यक्ति कार्य करता है, प्रयास करता है, तो फिर ये दूसरा शब्द, दूसरा दोष आया है, वो क्या है? प्रयास। तो प्रयास शब्द का अर्थ क्या है? तो शब्दार्थ में बताइए। अनुवाद से, श्लोक के अनुवाद में क्या लिखा है पढ़िए। नहीं, शब्द ये श्लोक में
प्रयास,
अत्यधिक उद्यम, अत्यधिक मेहनत, अत्यधिक उद्यम। अनुवाद में, श्लोक के अनुवाद में क्या कहा? ठीक है, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। और ये अत्याहार पर आधारित है, जहां अत्याहार है वहां प्रयास अवश्य होगा। यहां प्रयास का मतलब है अधिक प्रयास। जैसे शब्दार्थ में प्रभुपाद जी कहते हैं अत्यधिक उद्यम, ठीक है। अच्छा, तो आप पढ़िएगा भी। अब प्रयास की बात होगी, तो इस परिच्छेद से प्रयास
आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक
की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांति पूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। इससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत अथवा ईश्वर उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य इस प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। दुर्भाग्यवश तथा कथित सब मनुष्य ईश्वर के अनुभूति की परवाह न करते हुए अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने तथा जीव को तुष्ट करने के लिए केवल भोजन प्राप्त के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार में मनुष्यों के लिए दूध तथा अन्न के उत्पादन हेतु पर्याप्त अवकाश है लेकिन तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर बुद्धि को ईश्वर भावनामृत के अनुशीलन में न प्रयुक्त करके अपनी बुद्धि का प्रयोग अनेक आवश्यक तथा अनिश्चित वस्तुओं के उत्पादन में करता है। इस प्रकार फैक्ट्रियां कसाई घर वेश्यालय तथा मदिरालय खोले जाते हैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र न करने अधिक न खाने या व्यर्थ की कृत्रिम सुविधाएं न रखने के लिए कहा जाता है तो वे सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। सामान्यतः लोग सारा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते यही उसका दुर्भाग्य है।
ठीक है इसको घुमाएंगे जरा। तो प्रयास के बारे में एक मिनट क्या है हो गया हाँ हाँ। तो प्रयास क्या है? उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है और प्रयास अत्याहार के कारण होता है। दूसरा लाइट चलता है ये वाला ठीक है। तो अभी जो हमने परिच्छेद पढ़ा उसका सार अगले चार्ट में हम आपको लिखलाएंगे। आप सबने लिख लिया ये? ठीक है घुमाइए। ठीक है अब प्रजल की चर्चा में अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हैं श्री प्रभुपाद जी। तो इस चार्ट में इस परिच्छेद का सार आप पाएंगे और इसमें वैदिक अर्थव्यवस्था और आधुनिक या भौतिक अर्थव्यवस्था की तुलना की गई है। प्रयास ये प्रयास के इसी परिच्छेद में जो हमने पढ़ा है अभी बस उसका सार है यहां पर। आप समझ रहे हैं ना किस भाग के लिए ये चार्ट है? बताइए किस परिच्छेद के लिए है? प्रयास वाला परिच्छेद जो है उसके संदर्भ में है ये। ठीक है ना? वैदिक अर्थव्यवस्था में क्या होता है? ये भगवत भावना युक्त है, उच्च विचार युक्त है और भौतिक जो अर्थव्यवस्था है वो भगवत भावना विहीन अर्थव्यवस्था है। वैदिक अर्थव्यवस्था में सरल जीवन बिताया जाता है, भौतिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था में अनावश्यक एक वर्ड मिस हो गया इसमें तथा अनिच्छित होना चाहिए, अनावश्यक तथा अनिच्छित वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है, अनावश्यक तथा अनिच्छित अनिच्छित वस्तुओं का उत्पादन, जिससे कि जीवन सरल नहीं रह जाता। वैदिक अर्थव्यवस्था भूमि और गाय पर आधारित होती है। अनिच्छित च और छ, आधा च और छ, अनिच्छित छ छ च और छ, इच्छा इच्छित अनिच्छित, तो वैदिक सभ्यता भूमि और गाय पर आधारित होती है और आधुनिक भौतिक अर्थव्यवस्था बड़े कारखानों, वेश्यालयों, कसाई घरों आदि पर आधारित होती है। वैदिक सभ्यता वैदिक अर्थव्यवस्था में एक स्थान में रहकर शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह हो सकता है। व्यक्ति अपने जगह रहेगा, गायों का पालन करेगा, अपनी खेती करेगा, स्वावलंबी जीवन बिताएगा। परंतु आधुनिक और भौतिक अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है, जीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता पड़ती है। मुंबई जैसे शहर में या दूसरे जगह में भी लोग दो घंटे तीन घंटे अपने दफ्तर घर से दफ्तर जाते हैं, फिर दफ्तर से और घर आने के लिए दो तीन घंटे लग जाते हैं। कई लोगों को ऐसे करना पड़ता है, आगरा से दिल्ली रोज जाते हैं नौकरी के लिए, कई पूना से बंबई रोज जाते हैं नौकरी के लिए। यह है आधुनिक अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, गांव को छोड़कर शहर में जाता है और शहर में जाके केवल भीड़ बढ़ा देता है, वहां तरह तरह की समस्याएं हो जाती हैं। अर्थात वैदिक अर्थव्यवस्था भगवान के नियमों के अनुसार है और ये सुखप्रद अर्थव्यवस्था है। परंतु आधुनिक अर्थव्यवस्था केवल एक चमक धमक की अर्थव्यवस्था है, केवल बाहरी दिखावे की अर्थव्यवस्था है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें, चमकने वाली चीजें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अंदर सब खोखला है और व्यक्ति को अधिकतर श्रम ही होता है। दुखप्रद जीवन है ये, दुखप्रद अर्थव्यवस्था। तो ये इस परिच्छेद का सार है, सब समझ गए हैं ना आप सब। हाँ, तो आप बताइए, अभी वैदिक और आधुनिक सभ्यता में अंतर क्या है, कौन बताएंगे, अपने शब्दों में बताइए बिना देखे हुए, जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। माताओं में से कोई बताना चाहते हैं? हाँ माता जी बताइए।
जो वैदिक है वो भगवत भावना से युक्त है, जो आधुनिक सभ्यता
किस प्रकार की चीज है? हाँ बिल्कुल, जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, जो वास्तव में अनिच्छित हैं, ऐसे चीजों को आवश्यक बना के इनका उत्पादन करते हैं, एक कृत्रिम अवस्था है ये, इसलिए जीवन सरल नहीं रहता है, कठिन हो जाता है। ठीक है। आधारित है, देख लीजिए, घर से कारखाने जाना पड़ता है, कारखाना तो एक ही स्थान में है, कहीं मीलों दूर है, फिर व्यक्ति को चाहिए गाड़ी, रेलगाड़ी, बस, फिर कितनी समस्याएं ये बस इसकी वजह से होता है, क्योंकि आदमी को इधर से उधर जाना पड़ता है। गांव में ऐसी कोई समस्या नहीं, अपना घर है, दो चार बीघे जमीन है, बस अपनी खेती करो, अपने गाय को संभालो, गाय का दूध पियो, गाय के दूध के घी में अपना भोजन खाओ, मस्त रहो, क्या चाहिए और? बिल्कुल, वैसे ये तो व्याख्या बहुत बड़ी है इसकी, लेकिन जितना इस परिच्छेद में है इतना ही हमने यहाँ लिखा है, वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है। और देखिए, हम यहाँ बैठे हैं, गायों के समक्ष बैठे हैं, कैसे लग रहा है? अच्छा लगता है ना, जब गाय चर रहे हैं, घास खा रहे हैं, घास खा के संतुष्ट होते हैं, और हमें देते क्या है? मूल्यवान दूध देते हैं, जो पौष्टिक आहार है, हमारी बुद्धि को तेज करती है, शुद्ध करती है। वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई मशीन बनाया है, उसको घास खिलाई और बाहर से चमत्कार का कोई वस्तु निकलेगा नहीं। और हमें इस सुंदर पशु को हम कतल खाने भेजते हैं, आप शायद नहीं जानते होंगे, या जानते भी होंगे पता नहीं, कि गाय के मांस का एक्सपोर्ट, निर्यात कहते हैं ना, क्या कहते हैं,
निर्यात
करने वाला देश कौन सा है सबसे बड़ी मात्रा में? भारत गाय के मांस का सबसे अधिक मात्रा में निर्यात करने वाला देश है भारत। एक व्यक्ति जो सरकारी अफसर हैं, वो बता रहे थे कि अगर आपको बांग्लादेश में एक क्रांति करा देना है और वहां सरकार है उसको गिराना है, तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है। क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि रमजान के पहले भारत से बांग्लादेश जाने वाले अवैध ढंग से जो लिए जा रहे हैं, उन गाय बैलों को जाना बंद कर दो, तो वहां तो हलचल ही मच जाएगा, क्रांति हो जाएगी, सरकार ही गिर जाएगा, लाखों लाखों पशु जाते हैं। और भारत में भी ऐसे बड़े बड़े कसाई घर बने हैं जिसमें हर दिन में 15,000 गायों के रहने पशुओं की हत्या होती है। वास्तव में हमने एक किताब पढ़ा था जिसमें किसी ने संशोधन करके निकाला था कि करीब करीब 250 साल पहले जो अंग्रेज आए थे, उनके जो गवर्नर जनरल थे यहां पर, उन्होंने सब बात यहां की परीक्षा की और उसने ये निष्कर्ष पर पहुंचा कि सारे भारत की रीढ़ है या उसकी इसका मूल है गाय, क्योंकि ये किसान लोग इतने सुखी हैं, इनके पास सब कुछ है, इतना उत्पादन हो रहा है, इनके पास भरपूर सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है इनके पास, ये गरीबी तो अभी की बात है, तो इसके पीछे गाय है। अगर इस देश को वश में करना है तो गाय की हत्या करनी चाहिए। तो इस बात से उनकी सारी स्ट्रेटेजी जो है, उनकी पॉलिसी शुरू हुई, फिर कत्लखानों को शुरू करना, बनाना शुरू कर दिया, फिर आइडिया उन्होंने लिखा, एक कागज है जो उन्होंने वापस इंग्लैंड में लिखा था। उन्होंने सारा स्टडी की कि जब तक गाय मारे नहीं जाएंगे तब तक यहां की अर्थव्यवस्था बहुत बनी अच्छी तरह से मजबूत बनी रहेगी। और आज यहां लोग इसी परंपरा को चलाए जा रहे हैं, तो कितनी बड़ी विडंबना है, कितना दुख, कितने दुख की बात है। ऐसे सुखी जीवन जो कि एक साधारण बेचारे गाय बैल को पालन करने से हो सकता है, उसको त्याग कर हम केवल बड़े बड़े कारखाने हम खड़े कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जब अकाल का समय आएगा तो क्या आप आपके कारखाने के नट और बोल्ट खा पाएंगे, और लोहे को चबा पाएंगे क्या? नहीं। स्टील एल्यूमिनियम चबा पाएंगे? नहीं। उससे मैं आपको खेती का उत्पादन ही चाहिए। और खेती का उत्पादन होगा कैसे जब आपके पास गाय और बैल नहीं है? तो आधुनिक आदमी कहेगा गाय बैल की क्या जरूरत है, हमारे पास ट्रैक्टर है, हमारे पास रासायनिक खत है। तो इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि इन रासायनिक खत की वजह से देखिए कितना नुकसान हो गया है, भूमि बंजर बनती जा रही है। पंजाब जो कि सबसे ऐश्वर्यशाली प्रांत था, वो आज क्या दशा, किस दशा में है ये कहना मुश्किल है। सारी भूमि बंजर होती जा रही है पंजाब में, और रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने की वजह से सारी भूमि प्रदूषित हो गई है। भूमि के भीतर जो जल है वो प्रदूषित हो गया है। और आजकल दो पीढ़ियों में ही देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे हैं उनके जन्म से ही ऐसे ऐसे रोग हो जा रहे हैं जो अभी उनको समझ में आ रहा है कि ये सब दूषित पानी और अनाज की वजह से है। जब हम रासायनिक खाद जमीन में डालते हैं तो फिर ये अनाज में चले जाता है और इसी अनाज को हम खाते हैं, तो रोग नहीं होगा तो और क्या होगा। साथ साथ ये जो रासायनिक पदार्थ हैं वो जमीन के अंदर पानी है उसमें मिल जाते हैं, हम बोरिंग करके उस जल को निकालते हैं, उसको पीते हैं, तो रोग नहीं होगा तो और क्या होगा। इस प्रकार से हर चीज में हमने प्रदूषण ला दिया है, सब कृत्रिम अवस्था है, कृत्रिम चीजें हैं। जिस प्रकार से ट्रैक्टर को लाना मतलब बैल की हत्या करना, उसी प्रकार से चाय के लिए भैंस को रखना मतलब गाय की हत्या करना। क्योंकि चाय के लिए भैंस का दूध अच्छा रहता है, भैंस के दूध में फैट कंटेंट अच्छा रहता है ना, तो लोग भैंस का दूध पसंद करते हैं। आजकल शहरों में भैंस के दूध की कीमत गाय के दूध की से ज्यादा, यहां क्या कीमत है बाहर भैंस के दूध कितने में मिलता है? 22 रुपए लीटर, और गाय का दूध 16। देखिए मतलब भैंस का दूध ज्यादा मूल्यवान हो गया है। लोग ये नहीं जानते कि भैंस का दूध पीने से हमारी बुद्धि भी भैंस की तरह हो जाएगी, और गाय का दूध पीने से हमारी बुद्धि तेज हो जाएगी। आप देखिए यहां गौशाला में कभी जाके देखिए, एक गाय के बछड़ा जो है उसको छोड़ दीजिए, वो सीधे सैकड़ों गायों के बीच में अपनी मां को पहचानेगा और सीधे अपने मां के पास जाके दूध पिएगा। भैंस का बच्चा ऐसे नहीं कर सकता है, वो ढूंढता रह जाएगा, वो पहचान नहीं पाएगा। पर आजकल लोग केवल चाय पीने के लिए भैंस को पाल रहे हैं, तो जहां भैंस है भैंस से दूध मिल रही है तो गाय को क्या, गाय की क्या आवश्यकता है, कत्ल खाने में भेज दो। और गाय को रखेंगे भी, अगर बैल हो गया बैल से तो दूध नहीं ले सकते, तो क्या करना चाहिए, कत्ल खाने भेजो, क्योंकि दूध भी नहीं देगा ये बैल, और अभी ट्रैक्टर भी हमारे पास है तो अब बैल की क्या आवश्यकता, बेच डालो। और जब रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं तो गोबर की क्या आवश्यकता, ये गोबर जो है ये खेत के लिए, जमीन के लिए, भूमि के लिए पौष्टिक और स्वाभाविक आहार है। जिस प्रकार से हम जब अच्छी तरह से भोजन लेते हैं हृष्ट पुष्ट रहते हैं, उसी प्रकार से अगर हम भूमि को स्वाभाविक की जो प्राकृतिक आहार है वो देते हैं तो जमीन है, मिट्टी है, भूमि है, ये बहुत अच्छी रहेगी, अच्छी अवस्था में रहेगी। परंतु रासायनिक खाद डाल डाल के उत्पादन को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए ہم نے سب جگہ ستیاناش کر دیا ہے، بہت بڑا تہس نہس کر دیا ہے سارے دنیا میں. تو ایسے کئی چیزیں ہی، وشے تو بہت بڑا ہے، پرنتو سار میں یہاں پربھوپاد جی نے سندر ڈھنگ سے بتلایا ہے کہ واسطے میں سرل جیون، اونچے وچار رکھنا کتنا آوشک ہے. آج اس بات کو ہم سب بھول چکے ہیں، اور اونچے جیون اور سرل وچار کو ہم نے سویکار کیا ہے، اور اسی کو ہم پرگتی کہتے ہیں، انتی کہتے ہیں. تو یہ بہت بڑے درباگی کی بات ہے. تو 6:30 تو بج گئے، پریاس بھی سماپت نہیں ہوا ابھی. ٹھیک ہے، کافی ہے، تو کل چرچا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سنا ہو گیا اور آپ بھی تھکے ہوئے ہوں گے. آج 2 بجے سے آپ کلاس میں بیٹھے ہیں. آج کوئی پرشن ہے تو بتائیے. پرشن یہ ہے کہ اگر ہم وستیرن اندر ترپتی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے تو وہ مانیں گے نہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ سماج کی سیوا کرنا، راشٹر کی سیوا کرنا، یہ سب دھرم ہے، یہ شریشت ہے. تو ایک دم سے کہنے سے شاید وہ نہیں مانیں، لیکن دھیرے 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 جب ان کو گیان ہو جائے گا. ہمیں شروعات کرنا چاہیے پراتھمک گیان سے، ہم آتما ہیں، ہم شریر نہیں ہیں، اور ایسے پراتھمک گیان سے دھیرے 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 ان کی چیتنا کو اٹھانا چاہیے. اور سامنے والے ویکتی کیسے ہے اس کا انمان لگا کے ہمیں ایسے پرچار کرنا چاہیے. ہاں، دوسرا پرشن کیا ہے؟ ایک دم سے تو نہیں ہو سکتا، ایک دم سے ہم دنیا کو بھکت بنا سکتے ہیں. مول سمسیا ہے کہ لوگ بھگوت بھاونا وہین ہو گئے ہیں، اس لیے ساری سمسیا ہے. جب نیمیشارنیہ میں اکتر ہوئے تھے سارے رشی گن سوت گوسوامی کے سامنے، تو انہوں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ ایسے سمے آئے گا کلی میں جب لوگ گائے کی ہتیا کریں گے. جب ان کو ایسے بتایا گیا تو ان کو دھکا پڑا، ارے ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی سمے آئے گا جب لوگ گائے کی ہتیا کریں گے. مطلب وشواس نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ وہ سماج کا ستر تھا، لیول سٹینڈرڈ تھا سماج کا. اس سمے بھگوت بھاونا یکت تھے لوگ. تو مول سمسیا یہ ہے کہ لوگ بھگوت بھاونا وہین ہو گئے. تو بھگوت بھاونا اگر ہم سب جگہ پردان کریں گے تو خود بخود یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جیسے جیسے لوگ دھارمک بنیں گے और धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है ये समझेंगे, और ये आने वाले एक दो परिच्छेदों में हम पढ़ेंगे इसी तात्पर्य में, तो ये हमारा संपूर्ण कार्य हो जाएगा। अगर हम केवल कहेंगे गाय बचाओ, ठीक है उनमें से थोड़े बहुत जो लोग धार्मिक है वो बचाएंगे, परंतु बाकी लोग पूछेंगे क्यों, फिर उनको समझाना पड़ेगा आपको, तो अलग दृष्टि से समझाया जा सकता है, एक तो धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। आजकल लोग आर्थिक बातों को बहुत महत्व देते हैं, तो आर्थिक दृष्टि से भी उनको समझाना चाहिए कि गाय को रखना क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों मूल्यवान है गाय। गोमय वसते लक्ष्मी ही, तो गोमय या गोबर में लक्ष्मी देवी का निवास है, तो जहां लक्ष्मी देवी है वहां क्या गरीबी हो सकती है, सीधी बात है। परंतु लोगों को उतना विश्वास होना चाहिए, तो उनको विश्वास दिलाने के लिए तरह तरह की चीजें, जैसे यहां हमारे भक्ति वेदांत स्वामी गौशाला में गोबर गौमूत्र जड़ी बूटी आदि से तरह तरह के औषधियां वगैरह बन रही हैं, जिनसे कि लोगों को पता चले कि देखो ये गाय और बैल कितने उपयोगी जानवर हैं, ये कोई साधारण जानवर नहीं है। अगर किसी पशु के गोबर से, किसी के मय से, मल से इतना कुछ हो सकता है और इतना शुद्धिकरण हो सकता है, तो फिर वो पशु का मूल्य कितना होगा, महत्व कितना होगा। तो हर दृष्टि से इस विषय को सामने बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अंततः विशेष करके वृंदावन में भगवान के प्रिय गायों की सेवा करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण का काम ही तो ये था ना। कोई अध्यापक है, कोई व्यापारी है, कोई क्या है, तो भगवान का व्यवसाय क्या है, गोचर गोपालक है, उनका नाम है गोपाल। तो विशेष करके वृंदावन में गायों की सेवा करना ये बहुत आवश्यक है।
लेकिन जो गाय मारे जा रहे हैं उनके लिए भक्तों को क्या करता
है, सबसे पहली बात है कि अपने को कृष्ण भावना को फैलाना चाहिए, ये मूल बात है। जैसे जैसे कृष्ण भावना फैलेगी उसमें गो सेवा गो रक्षा की बात तो आएगी ही आएगी। गो सेवा तो भक्ति का भी एक अंग है, जो कि रागानुगा भक्ति की अवस्था में भी किया जाता है, वो तदीय सेवन कहते हैं इसे, आप भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ेंगे तदीय सेवन, जो भगवान से संबंधित हैं, जैसे वैष्णव सेवा है, तुलसी सेवा, यमुना सेवा, गंगा सेवा, गो सेवा, ये सब एक ही श्रेणी में आते हैं, तदीय सेवनम, ये भी भक्ति के अंग माने जाते हैं। जो 64 अंग हैं भक्ति के, जिनका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी करते हैं, उसमें गो सेवा भी आती है। तो जैसे जैसे लोग भक्त बनते जाएंगे, वैसे वैसे खुद ब खुद कम होते जाएगा। साथ साथ हाँ, इस प्रकार से जैसे गौशाला चला के हम लोग बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी कार्य बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जागरण लोगों में हो जाएगा, जो श्रद्धालु लोग हैं उन तक बस हमें पहुंचना है। कितने सारे लोग आते हैं यहां जब बेचे जा रहे हैं हमारे गौशाला के उत्पादन, अच्छा ऐसे भी है, ये भी दवाई होती है, उनको सुनकर आश्चर्य लगता है। कल ही हमें मद्रास से फोन आया किसी का कि वो चाहते हैं यहाँ के गौशाला के कुछ चीजें चाहते हैं मद्रास से, और आज ईमेल आया नाइजीरिया अफ्रीका से कि हमें कुछ बताइए कि क्या उत्पादन आप कर रहे हैं गोबर से, हम भी करना चाहते हैं हमारे देश में। वो भक्त भी नहीं है, कैसे कैसे उनको पता चला है पता नहीं, कोई भक्त आए होंगे उनसे बात करके ऐसे ऐसे पता चल गया होगा। तो ऐसे हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाने से खुद ब खुद बात फैल जाएगी। ठीक है, हाँ प्रीचिंग हमारे प्रचार का जोर क्या होना चाहिए जब हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं आदि, तो ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि देश काल पात्र के अनुसार आपको विचार करना होगा कि जिस स्थान में जाते हैं उस हिसाब से आपको बात करना होगा। अंततः हमारा उद्देश्य है ये स्थापित करना, उनको प्राथमिक ज्ञान देना कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण है, आत्मा का संबंध प्रेम का है भगवान कृष्ण के साथ, आपको श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करनी है और ये संभव है जब आप भक्तों के संग में आपके हरि नाम का संकीर्तन और जप करेंगे। ये मूल बातें अगर होंगी तो बस हमारा सारा प्रवचन पूर्ण हो जाएगा। वो निर्भर करता है कि आप किन से बात कर रहे हैं, वही हम कह रहे हैं देश काल पात्र के अनुसार। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जो श्रद्धालु हैं तो उनको और डायरेक्ट आप कई बातें कह सकते हैं। भक्तों को ऐसे कई स्थानों में जाना पड़ता है जहां लोग केवल स्वीकार, जो भी आप कहेंगे वो स्वीकार करेंगे, तो फिर बोल दीजिए पूरा जो भी कुछ है, उनसे जब भी करवाइए, कीर्तन भी खूब कीजिए। लेकिन कई ऐसे स्थान होते हैं जहां प्रचार हेतु इतने डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। आजकल ये चल रहा है, क्या कहते हैं इसे, वो धर्म निरपेक्षता। तो बड़े बड़े कारखानों में जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं तो इतने स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते, फिर अगली बार बुलाएंगे नहीं। इसलिए धीरे धीरे से बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ता है। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं क्योंकि काफी देर हो गया। जी क्या चीज? हाँ हाँ जी, प्रश्न ये है कि जब कली का स्वभाव या कली का गुण है तो क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं इस कलियुग के भीतर एक स्वर्ण युग का उद्घाटन करने के लिए। तो इन 10,000 वर्षों में अब स्वर्ण युग आएगा जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन सब जगह फैलेगा, हर देश में, हर गांव में, हर शहर में कृष्ण भक्त दिखाई पड़ेंगे। हालांकि इस समय में लगता है कि यह संभव कैसे होगा, परंतु यह होगा और आप सब भक्तों के द्वारा होगा। ठीक है, हाँ माता जी, आखिरी प्रश्न आपका फिर। बिल्कुल बिल्कुल, भारतवासियों को सिखलाना ही पड़ेगा कि कितना बड़ा पाप है ये। जैसे हमने कहा कि दुनिया में सबसे पहले नंबर का देश है गाय के मांस के निर्यात में, चमड़े में, तो और क्या कहा जा सकता है कि नहीं? इसलिए हमें प्रचार बहुत कुछ करना है, हमें अपने आप बहुत शक्तिशाली भक्त होना है और फिर प्रचार बहुत जोरदार हमें करना है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, गौर प्रेमानंदे।